Today is between Master and Disciple from Jainism, Holy Acharanga Sutra, Book 1, 5th Lecture, will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Alaksi, Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. संसार के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जैन धर्म, जिसे परंपरागत रूप से जैन धर्म कहा जाता है। प्राचीन भारत से उत्पन्न यह तत्व ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति या आत्मा की सच्ची प्रकृति को प्राप्त करने के लिए सही विचार, सही ज्ञान और सही आचरण जैसे नियमों का पालन करता है। अहिंसा का नियम भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी जीवों के लिए दया रखते हुए जैन धर्म के अनुयायी पूर्ण रूप से शाकाहार का पालन करते हैं। जैनी 24 तीर्थंकरों या पैगंबरों के प्राचीन ज्ञान का अनुसरण करते हैं, जिनकी शिक्षाओं में अगम सूत्र नामक पवित्र धार्मिक ग्रंथ समाहित है। भगवान महावीर का जन्म 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन वैशाली राज्य में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। भगवान महावीर को अंतिम तीर्थंकर माना गया है। बाद में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने अपने राजकीय पद का त्याग कर दिया। केवल ज्ञान अर्थात अंतर्ज्ञान से प्राप्त की हुई दृष्टि से सर्व ज्ञान पाकर उन्होंने अपना शेष जीवन आत्मिक सत्य के बारे में उपदेश देकर व्यतीत किया, जो कि वर्तमान जैन धर्म के सिद्धांत हैं। हम आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं अचरंग सूत्र की प्रथम पुस्तक से 5वां अध्याय, शीर्षक है जगत का सार।
प्रथम पुस्तक 5वां प्रवचन जगत का सार कहलाता है। प्रथम अध्याय। बहुत से लोग जगत के विरुद्ध लक्ष्य के साथ या बिना लक्ष्य के क्रूर विचारों का सत्कार करते हैं। वे इन 6 वर्गों के प्राणियों के विरुद्ध क्रूर विचारों को ग्रहण करते हैं। उनके लिए आनंद प्रिय होता है, अतः वे मृत्यु के करीब होते हैं। क्योंकि वे मृत्यु के करीब होते हैं, वे मुक्ति से बहुत दूर होते हैं। लेकिन वे जो न तो मृत्यु के करीब होते हैं न ही मुक्ति से दूर होते हैं, एक धीमे और अज्ञानता के जीवन को कुछ घास की धार की तीक्ष्ण नोक पर कंपकपाते ओस की बूंद की तरह समझते हैं, जो हवा द्वारा हिलाया जाने पर गिर जाता है। एक मूर्ख क्रूर कार्यों को करता है, उस अज्ञानता के कारण दुख में आ जाता है, भ्रम द्वारा वह पैदा होता है, मरता है इत्यादि। इस भ्रम के बारे में सोच समझ के साथ परिचित होकर वह संसार से अवगत रहता है। सोच समझ के साथ परिचित नहीं होने पर वह संसार से अवगत नहीं रहता है। वह जो चतुर है काम क्रीड़ा की इच्छा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कर लेने पर उसको स्वीकार ना करना दुर्बल मन के वशीभूत दूसरी मूर्खता होगी। पश्चाताप और मन के इच्छित आनंद को छोड़कर उसे दूसरों को नियमों के पालन का निर्देश देना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूँ, देखें, बहुत से जो रंगों की इच्छा करते हैं संसार के चक्कर में पड़े रहते हैं। वे यहाँ बार बार भावनाओं का अनुभव करते हैं। बहुत से लोग जगत के प्रति हानिकारक कार्य करते रहते हैं। वे इन जीवित प्राणियों के विरुद्ध हानिकारक कार्य करते रहते हैं। मूर्ख भी अपने लगाव से पीड़ित रहते हैं, यहाँ बुरे कार्यों में प्रसन्न होते हैं, उसे मोक्ष का मार्ग मानकर गलती करते हैं जो नहीं होता। बहुत से लोग सांसारिक दुखों और कष्टों से छुटकारे के लिए तपस्वी का जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्ति को अधिक क्रोध, अधिक अभिमान, अधिक छल, अधिक लालच होता है। वे बहुत से कार्यों में प्रसन्न रहता है, रंगमंच के कलाकार या आवारा की भांति नियमित कार्य करता रहता है, बहुत सी योजनाएं बनाता है, अपने आवेग को मार्ग देता है, अपने कार्य से प्रभावित होता है। यद्यपि वह जागरूक होने का दिखावा करता है, सोच कर कि कोई व्यक्ति उसे नहीं देख रहा। अज्ञानता और लापरवाही के प्रभाव द्वारा मूर्ख कभी नियम को नहीं समझता है। आदमी दुखी प्राणी जगत ज्ञानी वे होते हैं जो खुद को अज्ञानता से मुक्त नहीं कर पाते हैं। मुक्ति के बारे में बात करते हैं वे जन्मों के भंवर में लगातार घूमते हैं। इस प्रकार मैं कहता हूँ, दूसरा अध्याय। बहुत से लोग जीवन में जगत के विरुद्ध हानिकारक कार्य नहीं करते हैं, वे इन जीवित प्राणियों के विरुद्ध हानिकारक कार्य नहीं करते हैं, उनसे विराम पाकर उनका खात्मा करते हैं। वे महसूस करता है यह एक अच्छा अवसर है, जो इस शरीर को सही समय मानता है उसको कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। यह ज्ञानियों द्वारा सिखाया गया मार्ग है। जब वह नियमों के प्रति सतर्क हो गया है उसे कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। दुख और सुख को उनके विविध रूपों में जानना चाहिए। व्यक्ति यहाँ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। यह घोषित किया गया है कि वे अपने खुद के पापों से पीड़ित रहते हैं, ना हत्या ना झूठ द्वारा। उसको धैर्य पूर्वक दुखद भावनाओं को सहन करना चाहिए जब उनसे प्रभावित होता है। वह व्यक्ति एक सच्चा भिक्षु कहलाता है। वे जो पापी कार्यों के प्रति नहीं झुकते हैं और दुख द्वारा प्रताड़ित होते हैं, केवल एक साहसी ही इनको सहन कर सकता है। उसे बाद में वैसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसा उसने अपने रूपांतरण के पूर्व किया था। काया क्षणभंगुर है, प्रकृति नाशवान है। यह अस्थिर अनित्य क्षणिक घटने और बढ़ने वाली परिवर्तनशील प्रकृति की है। इसे एक सच्चरित्र के रूप में देखना चाहिए। उसके लिए जो इसे अच्छे से समझता है, जो अद्वितीय शरण में प्रसन्न रहता है, मुक्त और निष्क्रिय जन्म चक्र में नहीं पड़ता है। इस प्रकार मैं कहता हूँ, बहुत से लोग इस जगत में कुछ चीजों से जुड़े होते हैं, वह थोड़ा हो या अधिक, छोटा या बड़ा, लौकिक या अलौकिक, वे इससे जुड़े रहते हैं इन गृहस्थों के बीच। इस प्रकार कुछ लोग भारी खतरा अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके लिए जो जगत के अध्याय पर विचार करता है और इन लगावों को नहीं स्वीकारता है, उसे कोई खतरा नहीं होता है। आदमी जो यह अच्छे से समझ गया है, उसे अच्छे से अभ्यास में लाना चाहिए। सर्वोच्च अच्छाई पर दृष्टि जमाकर नियंत्रण द्वारा विजयी हो। ऐसे लोगों में ही केवल असली ब्रह्मणत्व होता है। इस प्रकार मैं कहता हूँ, मैंने यह सुना है और यह मेरे अंतर हृदय में है, और बंधनों से मुक्ति आपके अंतर हृदय में ही होती है। वह जिसने सांसारिक लगाव से किनारा कर लिया है, बेघर लंबे समय तक धैर्य से पीड़ा सहता है, लापरवाह बार खड़ा रहता है, सावधान एक धार्मिक जीवन जीता है, इस संत स्थिति का पालन करें। इस प्रकार मैं कहता हूँ, तीसरा अध्याय। बहुत से लोग इस संसार में चीजों से जुड़े नहीं होते हैं, वे इन गृहस्थों के बीच इससे जुड़े नहीं होते हैं। वह एक ज्ञानी व्यक्ति है जिसने विद्वानों के शब्दों को सुना और समझा है। बिना भेदभाव के विद्वानों द्वारा कानून घोषित किया गया है। जैसा मैंने यहाँ जगत के साथ संबंध का नाश किया है, वैसे ही किसी दूसरे संबंध का नाश करना कठिन होता है। अतः मैं कहता हूँ, किसी को दृढ़ता का त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ जो खुद को पहले श्रम में लगाते हैं, बाद में वापस नहीं फिसलते हैं। वे जो खुद को पहले श्रम में नहीं लगाते हैं, निश्चय ही वापस फिसल सकते हैं। वे जो खुद को प्रारंभिक श्रम में नहीं लगाते हैं, निश्चय ही वापस फिसल सकते हैं। वह व्यक्ति भी इस प्रकार का होता है, जो जगत को मूल्यहीन समझता है, फिर भी उसके चक्कर में पड़ा रहता है। यह ज्ञान महापुरुषों द्वारा घोषित किया गया है। यहाँ ईश्वरीय नियम के अनुयायी ज्ञानी लगावहीन वे जो खुद को प्रातः और संध्या के बाद श्रम में लगाते हैं, हमेशा गुण पर विचार करते हैं और उसकी विशेषता को सुनते हैं, प्रेम और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। इससे लड़ें, किसी और चीज के साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए? यह मानव तन प्राप्त करना कठिन है, जो संघर्ष का मूल्य होता है। चतुर व्यक्तियों ने ज्ञान के विवेक की प्रशंसा की है। मूर्ख जो इससे पतित होते हैं जन्म के उत्तरदायी होते हैं इत्यादि। ज्ञानियों के इस धर्म में मूर्ख के पतन का कारण रंग और हत्या पर निर्भर होना घोषित किया गया है। लेकिन एक संत जो मुक्ति के मंझे हुए पथ पर चलता है, संसार को भिन्न दृष्टि से देखता है। इस प्रकार सभी संदर्भों में कार्य की प्रकृति को जानकर वह हत्या नहीं करता है, खुद को नियंत्रित करता है, मनमानी नहीं करता है। जो सुख और दुख को व्यक्तिगत समझकर दयालुता की सलाह देते हैं, वह संपूर्ण जगत में किसी कार्य में नहीं उलझेगा। खुद के आगे एक भारी लक्ष्य मुक्ति और दूसरी ओर नहीं मुड़ने का पालन करता है। किसी प्राणी से बिना लगाव के विनम्रता से रहता है। धनी जो मन से पूर्ण जागरूक है, जानता है कि एक बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, इसके पीछे नहीं जाएगा। जिसे आप धार्मिकता के रूप में जानते हैं, उसे आप संतमत के रूप में स्वीकारते हैं। जिसे आप संतमत के रूप में जानते हैं, उसे आप धार्मिकता के रूप में स्वीकारते हैं। यह दुर्बल, पापी, कामी, दुराचारी, गृह निवासी व्यक्तियों के साथ असंगत होगा। एक संत संतमत अर्जित करता है को अपना तन वश में रखना चाहिए। वे नायक जो सभी चीजों को उपेक्षा के साथ देखते हैं, तुच्छ और अशांत भोजन का उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन की बाढ़ को पार करने वाला एक संत बनने के लिए, संसार को पार करने वाला, मुक्त होने वाला, कर्म से विराम पाने वाला कहा गया है। इस प्रकार मैं कहता हूं। चौथा अध्याय। एक भिक्षु के लिए जो अभी तक भेद करना नहीं समझा है, यह बुरा और कठिन रूप से आगे बढ़ने वाला होता है। जब वह गांव से गांव अकेले भटकता है, कुछ व्यक्ति जब गलत मार्ग पर चलते हैं, क्रोधित हो जाएंगे जब उन्हें वाणी से उपदेश दिया जाएगा। और एक व्यक्ति अहंकार के साथ भारी भ्रम में धोखा खा सकता है। बहुत सी बाधाएं होती हैं, जो अज्ञानियों और अंधों द्वारा विजय पाने के लिए बहुत कठिन होती हैं। देखें कि यह आपके साथ ना हो। यह चतुर व्यक्ति का सिद्धांत है। आचार्य के विचारों को अपना कर बाह्य जगत के लिए उसकी नकल करता है। उसके सभी विषयों में उसे मार्गदर्शक और सलाहकार बनाता है। उसके निवास में रहता है, सावधानी पूर्वक रहता है, अपने मनानुसार कार्य करता है, उसके पथ का परीक्षण करता है, आचार्य के बहुत समीप नहीं होता है, जीवित प्राणियों से तंग रहता है। उस व्यक्ति को केवल अपना कार्य करना चाहिए, अपनी वाणी में सावधान और अपने मन की चौकसी करके उसे हमेशा पाप से परे रहना चाहिए। उसे इस संत मत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार मैं कहता हूं। पांचवा अध्याय। इस प्रकार मैं कहता हूं। एक झील पानी से भरी होती है, वह समतल धरती पर है, यह धूल से मुक्त है, बहुत सी मछलियों का ठिकाना है। देखें, वह ज्ञान की धारा में खड़ा है और सभी दिशाओं से सुरक्षित है। देखें, जगत में महान ऋषि होते हैं, ज्ञानी, जागृत, कर्मों से मुक्त, सत्य को महसूस करते हैं। एक धर्मनिष्ठ छोर की कामना से वे एक धार्मिक जीवन चुनते हैं। इस प्रकार मैं कहता हूं, वह जिसका मन हमेशा डगमगाता है, स्थिर ध्यान तक नहीं पहुंचता है, कुछ सांसारिक बंधनों द्वारा जकड़े अनुयायी होते हैं, कुछ जो जकड़े नहीं होते हैं भी अनुयायी होते हैं। कैसे उसे निराशा ना हो जब अनुयायियों के बीच अनुयायी नहीं मिलता। लेकिन वह संदेह से परे सत्य होता है जो ज्ञानियों द्वारा घोषित किया गया है। जब भी एक विश्वासी तैयार व्यक्ति संघ में प्रवेश करने पर जैसा सत्य होना सोचता है, वे बाद में उसे सत्य प्रकट होता है। जो उसने सत्य होना सोचा, वह उसे बाद में असत्य प्रकट हो सकता है। जो उसने असत्य होना सोचा, वह उसे बाद में सत्य प्रकट हो सकता है। जिसे उसने असत्य होना सोचा, वह बाद में उसे सत्य प्रकट हो सकता है। जो वह सत्य होना सोचता है, वह विचार करने पर उसे सत्य प्रकट होता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। जो वह असत्य होना सोचता है, वह विचार करने पर उसे असत्य प्रकट होता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। लेकिन वह जो परिलक्षित करता है, उसे कहना चाहिए। जो परिलक्षित नहीं करता है, इसे सत्य होना विचार करें। इस प्रकार संबंध टूट जाता है। इसे निष्ठावान का मार्ग जाने, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आज्ञाकारिता में खड़ा रहता है। इस स्थिति में खुद को मूर्ख प्रदर्शित ना करें। वैसे ही यह आपके साथ होगा जैसे यह उनके साथ होता है जिसकी आप हत्या का इरादा करते हैं। वैसे ही यह आपके साथ होगा जैसे यह उनके साथ होता है जिसे आप प्रताड़ित करने का इरादा रखते हैं। वैसे ही यह आपके साथ होगा जैसे यह उनके साथ होता है जिसे आप सताने का इरादा करते हैं। उसी तरह से यह उनके साथ होता है जिसे आप दंड देने और भगाने का इरादा करते हैं। धार्मिक व्यक्ति जो इन भावनाओं पर जीता है, इसलिए ना तो हत्या करता है और ना ही दूसरों की हत्या का कारण होता है। उसे जानबूझकर खुद के लिए यह दंड नहीं निश्चित करना चाहिए। आत्मा ज्ञाता है या अनुभव करता है, और ज्ञाता ही आत्मा है। व्यक्ति जिसके द्वारा ज्ञान पाता है, वह आत्मा है। इस संदर्भ में यह स्थापित हो चुका है। वह जो आत्मा के सही सिद्धांत का पालन करता है, इस विषय को सही रूप से समझाया गया है। इस प्रकार मैं कहता हूं। छठा अध्याय। कुछ जो सच्चे नियम में शिक्षित नहीं हैं, अच्छे आचरण का केवल दिखावा करते हैं। कुछ यद्यपि शिक्षित हैं, अच्छा आचरण नहीं रखते हैं। ऐसा अपने साथ ना होने दें। यह चतुर व्यक्ति का सिद्धांत है। आचार्य के विचारों को अपनाकर बाह्य जगत के लिए उसकी नकल करता है। उसे सभी विषयों में मार्गदर्शक और सलाहकार बनाता है। उसके निवास में रहता है, पाप पर विजय पाता है। वह सत्य देखता है। अविजित उसे खुद का गुरु होना चाहिए। जगत में किसी चीज पर कोई भरोसा ना करके वह जो महान होता है और बाह्य जगत से अपना मन को निकाल लेता है, उसको आचार्य की शिक्षा द्वारा तीर्थंकरों की शिक्षा को सीखना चाहिए। अपने अंतर्ज्ञान से या सर्वोच्च के निर्देश से या उसे दूसरों से सुनकर एक व्यक्ति को ईश्वरीय नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। इस जगत के आनंद को जानकर सावधानी पूर्वक और प्रतिबंधित रहकर व्यक्ति को एक तपस्वी का जीवन जीना चाहिए। मुक्ति की इच्छा से एक नायक को पवित्र विद्या से सदैव विजय हो। इस प्रकार मैं कहता हूं। पाप की धारा ऊपर से, नीचे से, भीतर से आने वाली कही गई है। ये धाराएं घोषित की गई हैं, जिससे देखें पाप पूर्णता आती है। भंवर का परीक्षण करके एक व्यक्ति पवित्र विद्या में निपुण होता है। उसे पाप से दूर रहना चाहिए। पाप की धारा को पलटने के लिए जगत को छोड़कर ऐसा व्यक्ति कर्मों से मुक्त होता है, सत्य को जानता है और देखता है, सुख का परीक्षण करता है, परंतु उनकी कामना नहीं करता है। कहां से हम आए हैं और कहां हम जाते हैं, यह समझकर वह जीवन और मृत्यु के पथ को छोड़ देता है। गौरवमय मुक्ति का आनंद लेता है। सभी ध्वनियां फिर ठटक जाती हैं, जहां कल्पना की कोई जगह नहीं होती, ना ही मन वहां पहुंचता है। संत उसे अच्छे से जानते हैं, जो बिना सहारे के होता है। मुक्त ना तो लंबे होते हैं, ना ही छोटे, ना ही गोल, ना ही त्रिभुजाकार, ना ही वर्गाकार ना ही वृत्ताकार, वह ना तो काला है ना नीला ना लाल, ना हरा ना सफेद, ना ही अच्छी ना बुरी गंध रखता है, ना कड़वा ना ही तीखा, ना ही कठोर ना मीठा होता है, ना तो रूखा ना ही मुलायम होता है, ना तो भारी ना हल्का होता है, ना तो ठंडा ना ही गर्म होता है, ना तो कठोर ना चिकना होता है। वे बिना तन के, बिना पुनर्जीवन के, बिना संपर्क के होता है। वह ना तो स्त्री है ना ही पुरुष, वह देखता है, वह जानता है, लेकिन उसकी कोई उपमा नहीं है, जिससे मुक्त आत्मा की प्रकृति को जानने के लिए इसकी सुगंध निराकार होती है। उसमें बिना शर्त की कोई शर्त नहीं होती है, उसमें कोई ध्वनि, कोई रंग, कोई गंध, कोई स्वाद, कोई स्पर्श, इस प्रकार का कुछ नहीं होता है। इस प्रकार मैं कहता हूं।
हमें खुशी है आपकी उपस्थिति के लिए आज गुरु व शिष्यों के वार्तालाप में। कृपया बने रहें परम गुरु टेलीविजन पर धरती ग्रह हमारा प्रिय घर के लिए ध्यान योग्य समाचार के तुरंत बाद। स्वर्ग की कृपा से आपके जीवन में खुशी, प्रेम और शांति आए। वी enjoyed योर कंपनी टुडे फॉर बिटवीन मास्टर एंड disciple. Stay tuned to Supreme Master Television for Planet Earth, our loving home. Up next, right after Noteworthy News. May heaven's blessing fill your life with happiness, love and harmony.